अनुवाद जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कामों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तत्कार्य जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अर्थात जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाते हैं वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं आत्मा हूं कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं। जीवन का यह ब्रह्म बोध की भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में व्रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते, यहां तक कि अवभग्य ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। अहम ब्रह्मास्मि एक प्रसिद्ध वेद वाक्य है जो श्रीपाद शंकराचार्य के चार महावाक्य के अन्यतम है। इसका क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, तो वो सही है, वो वेद वाक्य है। लेकिन भगवद गीता में और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि उसका मतलब नहीं है कि मैं भगवान हूं, उसका मतलब है कि मैं भगवान जैसे आध्यात्मिक हूं तो फिर भी मैं सदैव भगवान का अंश हूं, मैं पूर्ण भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो वेद शास्त्र में ब्रह्म शब्द है और परम ब्रह्म शब्द है, आत्म शब्द है और परमात्मा शब्द है। अगर सब आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा शब्द का प्रयोग करने का कोई आवश्यकता नहीं था। तो आत्मा और परमात्मा इसका मतलब है नित्य और नित्यानंद चैतन चैतनानंद एक योग बहुवीर क्या है एक नाम यो विदाती कामा वेद शास्त्र में और भी कहा गया है कि अनेक असंख्य नित्य आत्मा है जो सब चैतन्यमय है लेकिन उनमें एक है जो परम और जिनसे और सब बाकी आत्मा इनकी वंचित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वो सब जीव भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैं ब्रह्म हूं उसका मतलब मैं सच्चिदानंदमय हूं, भगवान भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन भगवान असीम अपर्याप्त और जीव बहुत ही सामान्य है और जीव सदैव भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो यही वैदिक सिद्धांत जो हम भगवद गीता में मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी दिव्यावाणी परिवेशन किए जिससे अर्जुन जो शोक से विभ्रमित थे, जिससे अर्जुन का मोह का नाश होता। लेकिन क्या होते हैं बहुत से तथा कथित पंडित भगवद गीता पढ़ने से और विभ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस भूल धारणा से मैं ब्रह्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं विशाल हूं, इस भूल धारणा से भगवद गीता और समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ने से अगर शुरू से इस भूल धारणा मन में है तो वैदिक शास्त्र का अर्थ समझने की संभावना नहीं है। तो पहले से इस कुसिद्धांत अपसिद्धांत का हटाना चाहिए। भगवद गीता का शुरू में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि न त्वैवाहं जातु नासं न त्वं नै मे जनादिवः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमथ परा। कि हे अर्जुन देखो हमारे समक्ष ये सब राजागण है तो वे इसी स्थिति के पहले थे और इस युद्ध के बाद और सबकी इस जीवन के बाद इस देह धारण के बाद सब रहेंगे। अर्थात जीव सनातन है और हरे जीव का हरे रूप है और मोक्ष के बाद भी जीव भगवान नहीं होते, जीव जीव रहते हैं। इसका सिद्धांत श्रीमद् भागवत में भी है। मुक्तिर्हितां यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति। इसका क्या मतलब? मुक्ति हितां यथा रूपं जीव का स्वरूप है। अभी हम भौतिक स्थिति में अन्यथा रूप धारण करते हैं, यही रूप जो हम अभी भाग्य से मानव जन्म में रहे तो अभी हम मानव जैसे रूप धारण करते हैं, लेकिन इसके पहले हम कितना रूप कितने शरीर में थे, 84 लाख प्रकार की चीज जाती है, कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, पेड़ है, वनस्पति है, घास है, हाथी है, ऊंट है, सांप है, कीट कृमि है, माया का प्रभाव से जीव जो सच्चिदानंदमय अर्थात सनातन ज्ञानवान और आनंदमय है वो जीव तो बद्ध अवस्था में तो जो भी देह धारण करते वो सोचते कि यही देह मैं हूं। आपका क्या नाम है? धीरज। धीरज
धीरज
धीरज और धीरज जैन। तो आपके लिए यही समाचार है कि आप धीरज जैन नहीं है, आप भारतीय है नहीं है, आप पुरुष या नारी प्रकार से पुरुष है, लेकिन आप पुरुष नहीं है। ये केवल दैहिक आवरण है और वो दैहिक आवरण को एक मायिक परिचय लगाना है। आपका क्या उम्र?
उम्र
27। तो 30 साल के पहले आप कहां थे? आपका उम्र है 27। तो 30 साल के पहले धीरज जैन कहां थे? हाँ, लेकिन वो शरीर नहीं था, वो शरीर नहीं था, लेकिन आप थे। आप शरीर नहीं है, आप हिंदू जैन मुसलमान आप नहीं है, आप जीव है। और 100 साल के बाद धीरज जैन कहां रहे? तो संभावना है कि उस शरीर में होंगे, लेकिन बड़ी संभावना नहीं है। इसका मतलब कि जो भी शरीर हम पकड़ते हम सोचते वो मैं हूं, कुत्ते का शरीर में हम सोचते मैं कुत्ता हूं, हूं। और कचरे में खोज करते हैं कुछ सामने का चीज है, और अगर दूसरा कुत्ता बाहर से आता है तो उसको भगा देते हैं, ये मेरा स्थान है, यही रास्ता का श्रेष्ठ कुत्ता मैं हूं, तो बाहर के कुत्ता को भगा दे जाओ। लेकिन वास्तव में हम ईश्वरीय नहीं है, और इस स्थान इस जगह इस परिवार इस मकान इस कंपनी के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, क्षणिक संबंध है। तो हम सनातन हैं, इस शरीर का फायदा के पहले हम थे, और इसका मरण भी होगा। जितने भी हम प्रयास करते हैं बचने के लिए, तो योग व्यायाम करना है या जॉगिंग करना है, अगर हार्ट अटैक हो तो हेलीकॉप्टर से अपोलो हॉस्पिटल जाना है, ऐसा प्रबंध है दिल्ली में, बॉम्बे में है ऐसा सुन, तो सेल फोन से फोन करने पे अगर आपका पैसा काफी आपका पास काफी पैसा है, और खाली पैसा नहीं है कहीं लाख रुपया, तो आपको हेलीकॉप्टर से पहुंचाना है अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपका समय हो गया है तो जितने भी महान महान डॉक्टर जितने भी अच्छे चिकित्सक करते हैं, तो यमलोक की यात्रा होगी, होगी, सबका समय आएगा। तो नारद के बाद सब क्या बोलते, वो चलाएगा कहा जाए, श्रेय हृदय है तो श्रेय व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति चलाएगा वो आत्मा है। तो ये गलत फहमी बहुत प्रचलित है कि मरण के बाद हम सब भगवान के साथ लीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। या जीव जितना जीव इतना शी, ऐसे तो बहुत है लेकिन सही नहीं है। सही है कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं, ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सब जीव भगवान का अंश है। तो उसका मतलब नहीं है कि जीव भगवान के समान है, क्योंकि कृष्ण भगवान और भी बहुत है, जीवभूत सनातन सनातन अंश है। तो कृष्ण भगवान अंशी है, मतलब सभी अंश सभी जीव के स्रोत है और सभी जीव के प्रभु है, लेकिन अंश तो कभी भी पूर्ण वस्तु नहीं हो सकते। तो पूर्ण वस्तु वास्तविक वस्तु है भगवान, और भगवद गीता में हम यही पता मिलता है कि भगवान है कृष्ण, वे ही सर्वोत्तम है और एक और बहुत ही प्रचलित धारणा है कि भगवान ईश्वर है, लेकिन भगवान भी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ब्रह्म ज्योति है लेकिन वो ब्रह्म ज्योति परम ब्रह्म श्री कृष्ण से आते हैं, नहीं है कि श्री कृष्ण का रूप आरूप ज्योति से आते हैं, वो नहीं है। वो उल्टे सिद्धांत है, सिद्धांत है कि अव्यक्तम व्यक्तम मन्यन्ते माम बुद्धयः। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण वो अव्यक्त से आया है, वो व्यक्ति अबुद्धयः बुद्धिहीन। तो बुद्धिमान सिद्धांत क्या है? अर्जुन जैसे बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। तो अर्जुन श्री कृष्ण से दिव्या मधुरी माई वाणी सुन के तो यही सिद्धांत निकला कि परम ब्रह्म परम सत्य है कृष्ण, परम धाम है कृष्ण, पवित्रम परमं भवान कृष्ण है परम पवित्र, वे ही पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वे ही शाश्वत सनातन दिव्य पुरुष है। तो नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आया है, नहीं है, वही सनातन पुरुष है, आदिदेव और सब देव देवियां श्री कृष्ण से आते हैं, वही आदिदेव है, सभी देवताओं के स्रोत है, अज वही अज उनका जन्म नहीं होते, और विभु विभु मतलब महान सर्वशक्तिमान ईश्वर परम कृष्ण सन्निदानंद विग्रह अनाद्य आद्य गोविंद सर्व कारण कारणम, यही वैदिक सिद्धांत है कि ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर शब्द सामान्यतः हिंदू संप्रदाय में ईश्वर शब्द से भगवान शिव को संबोधित होते हैं। तो वो सही है कि शिव महादेव ईश्वर है और वे ही परमेश्वर भी, अर्थात इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक ईश्वर है। इस देश का ईश्वर है मनमोहन सिंह, या ईश्वरी है सोनिया जी। तो देश का ईश्वर है और स्वार्थ का ईश्वर है इंद्रदेव, चंद्रमा का ईश्वर है चंद्र देवता इत्यादि, और भौतिक ब्रह्मांड में परमेश्वर है शिव, वे ही श्रेष्ठ देवता है। लेकिन वे भी वास्तविक परमेश्वर श्री कृष्ण को मानते हैं। इस भौतिक स्थिति के परमेश्वर है शिव, लेकिन भौतिक स्थिति के परे वैकुंठ स्थिति है, गोलोक स्थिति है और परम परमेश्वर है श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह। इनका रूप है, हमारा रूप है, भारतीय रूप है, पाकिस्तानी रूप है, गाय का रूप है, कीट का रूप है, पैर का रूप है, तो ऐसे बहुत प्रकार का रूप है। लेकिन भौतिक स्थिति में ये सब रूप अस्थाई है, असत अचित निरानंद, असत मतलब अस्थाई, अचित हम वास्तविक ज्ञान से वंचित है, हम नहीं जानते हैं कि हम जीव है, हम सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं, ये शरीर का नाम मेरा नाम है, ये महिला मेरी पत्नी है और ये महिला मेरी माता जी है। तो ऐसे माया का प्रभाव से हम विभ्रमित होते हैं, हम अज्ञानी हैं और अज्ञानी अस्थाई रूप धारण करके हमारी स्थिति है निरानंद। लेकिन कृष्ण का विग्रह सचित आनंदमय है। कृष्ण का जन्म नहीं होते, कृष्ण का मृत्यु नहीं होते, कृष्ण की लीला है कि उनका जन्म होते हैं, जन्माष्टमी महोत्सव उद्यापित होते हैं। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी उद्यापित होते क्यों? क्योंकि कृष्ण का जन्म नहीं होता, यही कृष्ण जन्म का रहस्य है कि कृष्ण का जन्म नहीं होते हैं, लेकिन इनकी लीला है कि वे इनकी असीम दया से बाल्य जीवों का उद्धार करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होते आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और इसलिए भौतिक दृष्टि से एक साधारण व्यक्ति जैसे जन्म लेते, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म वो भी असाधारण है, क्योंकि पहले श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी माता को इनके चतुर्भुज रूप दिखाए, फिर एक असहाय शिशु जैसे रूप धारण किया। तो ये जन्माष्टमी का रहस्य है और महाभारत में भी कृष्ण लीला वर्णन, कृष्ण का मरण है लेकिन कृष्ण का मृत्यु नहीं होती। तो एक क्या बोलते हैं शिकारी, शिकारी के द्वारा कृष्ण का मृत्यु हुआ तो वो कैसे संभव था? तो भगवान कृष्ण इंद्र के साथ, शिव के साथ लड़ाई किए और जीते हुए, तो कैसे एक जंगली शिकारी का आक्रमण से कृष्ण मार दे? नहीं हो, श्री कृष्ण वो श्रीमद् भागवत में इस लीला का रहस्य का वर्णन है कि श्री कृष्ण वो शिकारी को बताए कि तो चिंता मत करो, मेरी स्वयं की इच्छा से मैं जानता हूं और असुर लोग का विमोहन करने के लिए इस लीला अभिनय करता हूं। लेकिन वास्तव में समस्त एकत्रित देवगण समान नहीं है मुझको कुछ भी क्षति करनी, तो ये सब कृष्ण की दिव्या लीला है और इसके बारे में बहुत भूल धारणा होते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि श्री कृष्ण व्यभिचारी है, झूठ बोलने वाले हैं इत्यादि, तो ये सब भूल धारणा होते हैं क्योंकि लोग आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हैं। तो ये आज का श्लोक जिसमें ब्रह्म शब्द आते हैं, तो कि हम ब्रह्म हैं, तो इस प्राथमिक ज्ञान से वंचित होने से आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत भूल धारणा प्रचलित होते हैं। एक प्रकार का धर्म है जो दुनिया में बहुत जनप्रिय है जिसका सिद्धांत है कि शरीर ही आत्मा है और शरीर के साथ आत्मा का फायदा होते हैं और शरीर का मरण का समय आत्मा सुप्त होते हैं और एक दिन आएगा जिसमें भगवान आएंगे और सबका विचार करेंगे और सबका मरा हुआ शरीर पुनर्जीवित करेंगे और सब जो गॉड को विश्वास किया है वो सब स्वर्ग देंगे और सब जो उसी धर्म को नहीं मानते थे सब चिरकाल के लिए नरक में प्रवेश करेंगे। तो ये सब बकवास है। लेकिन एक बहुत ही प्रचलित धर्म है कि शरीर ही आत्मा है, तो इसका मतलब है कि जो ऐसे सोचते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान यही है कि आत्मा और शरीर पृथक है और आत्मा का कोई वास्तविक संबंध नहीं है शरीर के साथ। तो ये ज्ञान लगभग सभी हिंदू या तथाकथित हिंदू मानते हैं। एक संप्रदाय है हिंदू धर्म में भी जो पुनर्जन्मवाद नहीं मानते। दक्षिण भारत में एक लिंगायत संप्रदाय है जो पुनर्जन्मवाद नहीं मानते, लेकिन लगभग सभी हिंदू वेद शास्त्र के अनुसार मानते हैं कि शरीर जैसे अस्थाय है, शरीर या आत्मा जीवात्मा स्थायी है, लेकिन मुक्त अवस्था में आत्मा का क्या स्वरूप है इसके बारे में हिंदू धर्म में बहुत विभाजन है, बहुत विवाद होते हैं। तो वास्तविक सिद्धांत भगवद गीता यदि यथारूप भगवद गीता मिलती है तो हम वास्तविक सिद्धांत मिलता है कि आत्मा का नित्य धर्म है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु की सरल भाषा में जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, जीव ही कृष्ण का दास है। तो पहले से इस ज्ञान से अस्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो भक्ति करके भी हम भक्ति का चरम फल अर्थात कृष्ण की सनातन सेवा प्राप्त करना तो हम नहीं मिले। क्या है भारत में या हिंदू धर्म में ज्यादा लोग भक्त हैं, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है और भक्त है, लेकिन ज्यादा लोग खुद के बारे में सोचते मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं। लेकिन भक्ति धर्म में भी बहुत शाखा है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, गणेश, शिव, साईं बाबा इत्यादि। तो ये बहुत प्रकार की भक्ति चलती है, लेकिन वास्तव में भक्ति केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रेम का आस्पद है और सब देवी देवियों वे भी कृष्ण के दास दासी है। तो एक और भूल धारणा है भक्ति के बारे में, भक्ति करना अच्छी है और भक्ति करने का चरम फल है ज्ञान प्राप्त होना, और वो ज्ञान क्या है कि जीव और भगवान एक ही है। तो भक्ति करना है, और जब एक जीव भक्ति में अग्रसर होते हैं तो ज्ञान आते हैं कि मैं भगवान हूं, और उस समय भक्ति करना बंद होते हैं, फिर वो ज्ञान में स्थित होते हैं कि मैं भगवान हूं। लेकिन ये ही बहुत बड़ी भूल धारणा और अपराध है, वो ऐसी भक्ति तो कोई भक्ति नहीं है। ये भक्ति का क्या मतलब है कि हे भगवान अभी मैं बहुत श्रद्धा से आपकी भक्ति करता हूं, लेकिन बाद में तुमको मारा दूंगा और खुद को भगवान बना दूंगा, तो ये भक्ति नहीं है। ये तथाकथित भक्ति करने से प्रेम प्राप्ति कभी भी नहीं होती, तो घर नरक में प्रवेश करना है, क्योंकि वो भक्ति भावना दिखाने से अंदर में शत्रु भावना होते हैं भगवान को, कि भगवान तुम भगवान हो, लेकिन कब तक तुम भगवान हो, मैं भगवान हूं, तो वो संभव नहीं है। संभव नहीं है कि जीव कभी भी भगवान हो सके, जीव सदैव कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास, ममाय अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सनातन दास है, लेकिन मैं भगवान हूं या मैं भगवान हूंगा इस प्रयास से भव बंधन होते हैं। चीटी भी कुत्ते भी सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं श्रेष्ठ कुत्ता हूं, कुत्त समाज में मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो सब ऐसे सोचते, सब दादा जी ऐसे सोचते, मानव शरीर में भी सब चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा होऊंगा, लेकिन संभव नहीं है। तो इसलिए भक्ति धर्म का मुख्य गुण है नम्रता। नम्रता जीव का स्वभाव है, लेकिन भौतिक स्थिति में, बद्ध स्थिति में नम्रता नहीं होती, दंगा होता है। दंभो दर्भ विमान खोज पारिश्रमी बचा अज्ञान अच्छा भी जात पार्थ संपदम आसुर। तो आसुरी प्रवृत्ति का प्रथम लक्षण है दंभ, मैं बड़ा हूं,
तुम लोग सब जाओ जाओ जाओ, मैं बड़ा हूं।
दंभ दर्प
अभिमान, मैं बड़ा हूं, क्रोध ए जाओ वो,
पारुष पारुष मतलब कर्कश खाता बन, लोगों को गाली देना, निंदा करना, वो सब असत गुण का मूल है अज्ञान। अज्ञान अज्ञान क्या है, ऐसे सब कोई भगवान नहीं है, अगर भगवान हो वो ज्यादा दिन भगवान नहीं होंगे, क्योंकि मैं भगवान हूं, ध्यान से मैं स्वयं भगवान बनूंगा। तो ये सब भक्ति विरुद्ध शत्रु भावना है। तो समझना चाहिए कि जीव भी ब्रह्म है, जीव भी आध्यात्मिक है, लेकिन मुक्ति के बाद भी जीव का एक ही धर्म है, परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सेवक। तो पहले पहले इस ज्ञान से युक्त होना चाहिए, फिर भक्ति मार्ग खुला होगा। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम रासलीला और ज्यादा लीला के बारे में इतने से नहीं बोलते, हम ज्यादा भगवद गीता ज्ञान बोलते। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसी मौलिक ज्ञान से अस्वस्थ नहीं होते, जब तक हम भूल धारणा से सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं, या जब तक हमारी किसी भी शंका होती है कि कृष्ण भगवान है, तो तब तक हम वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का प्रवेश है यही समझ, जीव का क्या स्वरूप है, जीव का क्या धर्म है, भगवान शब्द का क्या मतलब नहीं है कि भगवान अव्यक्ति है, नहीं है कि भगवान केवल ज्योति है, भगवान का मतलब सर्वैश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए, फिर भक्ति मार्ग में चलना बहुत सहज हो। लेकिन अगर ये सब भूल धारणा है, तो जितने भी हम कीर्तन तथाकथित कीर्तन श्रवण सेवन इत्यादि करते हैं, तो हमारी भावना नहीं शुद्ध शुद्ध नहीं होने से हम वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति में पहले श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद से पहले श्रवण है, श्रवण करना चाहिए। तो क्या श्रवण? तो हम कौन है, हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान कौन है, भगवान और जीव में क्या संबंध है, तो ये सब समझना चाहिए। तो इसलिए हमारा अनुरोध है भगवद्गीता यथारूप बार बार पढ़ लें और सुनिए भगवद्गीता प्रवचन बार बार। अति उत्साह लीला कथा सुनने के लिए अगर भगवत गीता ज्ञान सुनने के साथ नहीं होते हैं तो कृत्रिम होते हैं। लीला कथा सुनना तो मुक्त पुरुष के लिए है। हम जो अर्जुन जैसे विभ्रमित स्थिति में है, हमारे लिए उचित भगवत गीता ज्ञान सुनना। तो किन के पास ये भगवत गीता यथारूप नहीं है? सबके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो जरा सा बुक टेप वो कहां में लगाए हो भगवत गीता यथारूप ले, इसका क्या कीमत है, 80 रुपया, 100 रुपया, 700 रुपये। लेकिन वो ज्ञान जो आपने लेंगे इसमें अमूल्य है। एक और अनुरोध है, जिनके पास भगवत गीता यथारूप है, किन के पास है, अब बता ले लगभग सभी भक्त के पास है, तो इसको पढ़ लें। ऐसा है कि बहुत घर में है लेकिन खाली घर में है और खाली बैठने हैं, तो हमारे पास भगवत गीता है। अगर है वो अच्छा है, लेकिन आपके लिए और बहुत बड़ा लाभदायक होगा अगर आप खुलेंगे पढ़ लें। तो हर रोज भगवद्गीता यथारूप पढ़ना चाहिए, फिर आपका कल्याण होगा। घर में रहने से मंगल होगा, लेकिन वास्तविक आपका कल्याण होगा यदि आप प्रति दिवस इस भगवद्गीता को लेंगे और ध्यान से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी अर्जन कीजिए। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया सबके सबसे जनप्रिय कार्यक्रम के लिए, प्रसाद से। तो प्रसाद सेवा करने के पहले अगर किसी के प्रश्न हो भगवद गीता के बारे में तो जरा से पूछिए।
हरे साहब, आगे से प्रार्थना की बात न करें, जो खड़े हो बैठे हैं कोई बात नहीं आपस में, अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग भी प्रसाद हो जाएंगे।
माइक दीजिए, ठीक है, बाद में।
निराकार ब्रह्म और साकार भगवान के चार
तो है, एक्चुअली यही सब शब्द नहीं बोला, निराकार साकार यही शब्द हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम ऐसे बोलते हैं भगवान का आकार है, लेकिन वे ही आकार है और वे भी निराकार भी है। भगवान का मतलब कर्म सत्य पूर्ण है, तो पूर्ण में ही कुछ अभाव नहीं हो सकता। तो इस भौतिक जगत में हम रूप को देखते ही नहीं, तो अगर कर्म सत्य में रूप नहीं है तो कर्म सत्य अपूर्ण होता। तो कर्म सत्य में रूप है और अरूप भी है, जो हमारी कल्पना से अतीत है, लेकिन परम सत्य साकार है और निराकार है। तो फिर भी भगवान का रूप सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आते हैं। तो वो निराकार ब्रह्म ज्योति वो भी श्री कृष्ण से आते हैं, और कृष्ण ही परम सत्य है। वो ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो परम सत्य साकार निराकार दोनों है। श्रेष्ठ है भगवान का रूप। गीता का द्वादश अध्याय में अर्जुन का वही प्रश्न था, साकार उपासना या निराकार उपासना कौन से श्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण का उत्तर था, मेरा रूप उपासना वही श्रेष्ठ है। हाँ बोलिए।
हरे कृष्ण।
मृत्यु से डरते हैं ना, तो सबका माँ बाप जाएंगे, सबके दादा दादी सब जन, हम भी जन इस भौतिक स्थिति ऐसी है कि हमारे सब कुटुंब प्रिय मित्रों सब जाने वाले हैं, उससे हमारा दुख होते हैं। तो उस दुख अनुभव से जीवन का क्या अर्थ है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आप भगवत गीता पढ़ने से लगते और थोड़ा विभ्रमित हो। ज्ञान ज्ञान मिलते हैं भगवत गीता में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। शरीर विनाशी है लेकिन शरीर ही आत्मा अविनाशी है। आपके माँ बाप चले गए लेकिन आपके माँ बाप अभी तक है, दूसरी स्थिति में है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि मरा जाया व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में किसी के नारण नहीं होते। तो अच्छा हो आप आइए भगवत गीता प्रवचन में, सबको बताएं भगवत गीता पढ़ना, लेकिन सच है कि भगवत गीता समझ में इतना आसान नहीं है। तो अच्छा है आप रेगुलरली मंदिर आई है और भगवद गीता प्रवचन सुननी है, और आप ऐसे सभी शंकाओं का समाधान मिलेंगे। हरे कृष्ण। मैं गुरु नहीं हूँ, प्रभुपाद गुरु है, मैं प्रयास करता हूँ गुरु दास हूँ। लेकिन अभी हम भौतिक स्वरूप के साथ आत्म परिचय करते हैं, तो जब हम सभी प्रकार का भौतिक संबंध से अनासक्त होते हैं तब हमारा सिद्ध स्वरूप ज्ञान प्रकट होगा आपने आप मतलब भगवान की कृपा से। तो सिद्ध स्वरूप गोपी जैसे होते हैं, गोप जैसे गाय बछड़ा जल वृक्ष गोलोक धाम में ये सभी रूप है, और यही सब आध्यात्मिक जीव के स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप। लेकिन अभी इसी माया प्रभावित स्थिति में अगर हम सोचते हैं कि मैं ब्रज में सनातन धाम में मोर मयूर, तो हम उससे क्या समझेंगे? फिर हम सोचेंगे कि मैं मयूर पक्षी हूं, मतलब अभी तक हम सोचते कि गोप गोपी पुरुष नारी पक्षी वृक्ष हमारी क्या धारणा है इन सब के बारे में, भौतिक धारणा है। तो इसलिए भौतिक माया से मुक्त होना चाहिए, फिर हम स्वरूप सिद्ध होने से आत्मा का स्वरूप समझ सकते। अभी इसी हाल में अगर हम आत्म स्वरूप के बारे में धारणा करेंगे तो संभव नहीं होगा, हम एक भौतिक स्वरूप जैसे कल्पना करेंगे। तो व्रज की गोपियां साधारण ग्वालर की पत्नियां नहीं है, वे है भगवान श्री कृष्ण की मुख्य प्रेमिका। लेकिन ये विषय आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोत्तम कक्ष है। हरे कृष्ण।